आगे सूरत मुनाफिक होना है। नाम सुन के इंसान को पसीने आने लगते हैं। सूरत बकरा से इंसानों के मुख्तलिफ गिरोह चल रहे हैं, उनमें से एक गिरोह था वमिन अन्नास मन यकूल आमन्ना बिल्लाहि वबिल यौमिल आखिर, उसी को यहाँ मुनाफिक के नाम पे पेश किया जा रहा है। और मुनाफ़िकत खुलती है कब? जब अमली तकाजे आते हैं। अल्लाह के नबी के गिर्द भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको छांटना लाजमी था, वरना अल्लाह के नबी के जाते ही पता नहीं ये क्या कुछ फितने फैलाते। तो पहली तीन आयात में मर्ज़े निफाक के इब्तदाई तीन दर्जे हैं: कस्में खाना, झूठ बोलना और अल्लाह के रास्तों से रोकना। अल्लाह ऐसे लोगों के दिलों पे मोहरें लगा देता है। फिर आयत 4 से 8 में मर्ज़े निफाक का चौथा दर्जा है, और इस मर्ज़ की हलाकत खेजी। और वो क्या है? बातें बड़ी प्यारी करते हैं लेकिन जिस्म और जुस्से खूब मोटे, सुस्ती कह लीजिए, नेकी के मौके पे अपनी जगह से टस से मसना होना, और लकड़ी के कुंडे, सूखी लकड़ियाँ कहा गया इधर, यानी जो लकड़ी होती है ना दरख्त से कटी हुई, उसकी तरफ इशारा है इसमें। आप देखिए कि सूरत इब्राहिम में मोमिन को एक शजरतन तयजीबा से मौसूम किया गया था। दरख्त होता है एक सरसब्ज़ो शादाब दरख्त होता है, फूल पत्तों वाला, फल वाला। यहाँ मुनाफिक के लिए जो लफ्ज़ आए हैं मैं पढ़ देती हूँ ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सके। बाद में कान्नहुम खुशबु मुसन्नदा यख्सबून कुल्ल सैहतिन अलैहिम, ये गोया के लकड़ी के कुंडे हैं, पैनलिंग की हुई जो ब्यूटिफिकेशन के लिए लकड़ी का काम होता है ना, उसकी तरफ इशारा है। अब लिखिए, यह दरख्त पे पानी पड़ता है ना तो उस पे बहार आती है, जबकि सूखी लकड़ी जो काट के कहीं रखी हो कुछ दिन बारिश का पानी पड़ता रहे तो फूल जाती है, फफूंदी लग जाती है। यही फर्क है मोमिन के कुरान सुनने में। उसके ऊपर तो जब कुरान की बारिश होती है ना तो उसके अंदर से तो फिर पत्ते फूलते, पत्ते फूटते और फल फूल लगते और सब्जा और खूबसूरती दिन ब दिन ग्रो करता है। इसके बरक्स मुनाफिक कुरान सुनकर फूल जाता है और अकड़ जाता है। अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। और फिर आयत नंबर 9 में मर्ज़े निफाक का सबब और उससे हिफाजती तदाबीर हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से आगे, अभी इसको देखते हैं इस आयत को आगे। और फिर आयत 10 से 11 यानी इस सूरत के अंत तक फिर मर्ज़े निफाक का इलाज है। और यही आयतें हमारी इस सूरत में से तदब्बुर की आयतें हैं, हिदायत वाली आयतें हैं, निफाक का इलाज। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो गाफिल ना करते तुम्हें तुम्हारा माल और औलाद अल्लाह की याद से, और जो ऐसा करेंगे तो वही लोग खसारा उठाने वाले हैं। और खर्च करो इस रिस्क में से जो हमने तुम्हें दिया है इससे पहले कि तुम में से किसी की मौत आ जाए तो वो कहने लगे कि मेरे परवरदिगार तूने मुझे थोड़ी सी मुहलत क्यों ना दी ताकि मैं सदका कर लेता और हो जाता नेक लोगों में से। और अल्लाह ताला हरगिज़ मोहलत नहीं देता इसको जिसकी मौत आ जाती है, और जो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। जी, मौत के वक्त अगर आपने कोई फरमाइश की तो क्या की? सारी ज़िंदगी ये दो चीज़ें ही बचा के रखता है मुनाफिक अल्लाह से, ना माल लगाता है अल्लाह के रास्ते में ना औलाद को लगाता है, और यही दो चीज़ें अल्लाह की याद और उसके जिक्र और उसकी किताब से रोकती हैं। और जब मौत का वक्त आता है, असल खुलती है, तो फिर तो पता लग गया कि अब तो सब पीछे छोड़ जाना है, तो फिर इंसान ऐसी ख्वाहिशें करता है। अल्लाह ना करे हम में से कोई इस दिन का इंतज़ार कर रहा हो। तो जीने वालों को जाने की तैयारी करनी चाहिए, आज दे दीजिए तो फ़ायदा होगा, मौत के वक्त तो जितना भी देंगे वो तो फिर मिल ही जाना है, आप अल्लाह के रस्तों में ना भी दें वो तो गैरों ने ले ही जाना है। तो इस पे बड़ा प्यारा मौजू है जो सूरत पूरी हुई सुबह के दौरे कुरान में DQ 2020 में, यही आयतें हमारी इस साल थीम आयतें थी, और इस पारे का थीम भी यही था, अहलोयाल का फितना, कैसे ये बीवी बच्चों की मोहब्बत हमें बस जब अल्लाह के हुक्मों से दूर करती है। आगे है सूरत तगाबन, इसका तो क्या ही कहना। गबन का दिन, धोखे का दिन, क़यामत के नामों में से एक नाम है। गबन का लफ्ज़ उर्दू में आपने सुना होगा, ये वही लफ्ज़ है, यानी क़यामत के दिन चीज़ें इधर से उधर हो रही होंगी, एक अकाउंट की नेकियां दूसरे अकाउंट में डाल रही होंगी, अफरा तफरी होगी, लोग बाहर जो बड़े नेक दिखते थे वहाँ वो तो किसी और ही लाइनों में लग गए, जिनके बारे में उम्मीद थी ये फर्स्ट आएंगे वो तो बमुश्किल पास हो रहे हैं, और वहाँ मुफलिस हो रहे हैं वो लोग जो नेकियों के पटारे लेकर आए लेकिन लोगों को ईज़ा दी ज़ुबान से, हाथ से, और लोगों को उसकी नेकियाँ बांटी गई और बिल आखिर फिर उसके गुनाह भी उसके ऊपर डाल दिए गए। क़यामत का दिन बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होंगे, अल्लाह ताला में उसे रुसवा न करना। जो लोग हमें समझते हैं उससे अच्छा हमारा हशर करना, ऐसा ना हो कि लोगों में हम अच्छे और वहाँ के बुरे। पहली 7 आयतें वजाहत ईमान है कि ईमान है क्या। अगली 8 से 10 तक दावत ईमान की आयतें हैं, क्या हो तुम्हें बताएं कि ईमान कर लाना कैसे। फ़ामिनु बिल्लाहि व रसूलिही व नूरिल्लज़ी अनज़लना वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर। और उसके बाद फिर आयत 11 से 15, 11-15 ईमान के समरात और तकाजे हैं कि जब ये सच्चा ईमान दिल में आने लगता है तो फिर अकीदे तौहीद बड़ा पुख्ता हो जाता है और तकदीर पर ईमान बढ़ता है कि जो मेरे नसीब की चीज़ है वो तो कहीं जा नहीं सकती। मासाब अमिन मुसीबत निल्ला बिस्निल्ला वमन यूमिन बिल्लाहि यहदी कल्बा वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम। अल्लाह हमें ईमान के पहाड़ बना दे। फिर आयत नंबर 16 से 18, 16-18 यानी आखिरी आयतें ईमान के तकाजे अदा करने की दावत। के फ़त्तकुल्लाह मस्ततातुम वस्माऊ वतीऊ वानफ़िकू खैरन लिअन्फुसिकुम। अल्लाह में इन सारे तकाज़ों पे लब्बई कहने वाला बना दे। हिदायत में से आयत का नंबर नोट कीजिएगा 11-16। ईमान के समरात यानी आखिरी आयतें ही मा साब अमिन मुसीबत निल्ला बिस्निल्ला। कोई मुसीबत नाजिल नहीं होती मगर अल्लाह के हुक्म से। मान लीजिए किसी को बुरा मत कहिए, कोरोना को किसी भी इंसान या किसी ताकत से मत जोड़िए। वो ज़ाहरी सबब ढूंढते हैं, आप बातनी सबब ढूंढिए और इससे सबक लीजिए, कितनी खैर हो जाएगी इसमें। किसी का बड़ा प्यारा जुमला याद आ गया, बेटी की शादी थी, कुछ करना तो था लेकिन वो भी अब नहीं होगा कोरोना की वजह से, सादगी से बेटी को रुख्सत करें, ये सिखाने आया कोरोना। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला हमें राज़ी कर दे। फिर अतीउल्लाह और अतीउर रसूल है, फिर अल्लाह पे तवक्कुल की बात है, और फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़्वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल्लकुम। तुम्हारे बाज़ मिन के लफ्ज़ से बता दिए, सारे नहीं, कुछ शौहर और बीवियाँ और कुछ बच्चे दुश्मन है एक दूसरे के। वो कौन से जो अल्लाह के हुक्म से रोके, जो नाफरमानियों पे माइल करे, जो हराम खिलाए, जो अल्लाह के रास्ते की हिजरतों से रोके, जिद्दोजहद से रोके। आप क्या करो, छोड़ दो इनको। दिल में तो यही आता है कि अल्लाह कहेगा इनको कहीं दूर फेंको जाके। नहीं, डिक्शनरी के 3 लफ्ज़ हैं माफ़ी के, तीनों इधर आ गए, ताफू व तस्फहू व तगफिरू। जाने दो, वर रुक करो, इनकी बड़ी बड़ी बातों को इग्नोर किया करो। तस्फ़ दरगुजर करो, कुछ बुरा कर ले ज़्यादा ही तो बस सफ़ा पलट दो, और फिर अगर तौबा करना चाहे माफ़िया मांगे तो तगफिरू माफ़ कर दिया करो। क्योंकि इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ये है ही फितना। फितना क्या होता है, जो चीज़ हो नेमत लेकिन गलत इस्तेमाल करने से वो फितना बन जाए, वो आजमाइश बन जाए, रहमत जहमत बन जाए। आज बच्चे और औलाद को अगर अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक नहीं इस्तेमाल करेंगे, उनकी तरबियत नहीं करेंगे तो वाकई फितना बन जाएंगे और बने हुए आज फितने। अल्लाह ताला हमारी आंखें खोल दे, और फिर अल्लाह के पास बड़ा अजर है। अल्लाह से डरते रहो जितना तुम डर सको, और सुनो और इताअत करो और खर्च करो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए, अपने ही हक में तुम्हारी बेहतरी होगी। और जो कि अपने नफ्स के बुखल से बचा लिया गया वही फलाह पाने वाला है। अल्लाह ताला आपको मुझे इन आयतों पर अमल करने की तौफीक दे। आगे है सूरह तलाक, जिसको निसाए सुगरा भी कहते हैं। यहाँ से देखिए कि औरतों के मसाइल इतनी कसरत से कुरान में है। दूसरी बात है, निकाह नाम की कोई सूरत नहीं है, तलाक की है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि ऐसे झगड़ने वालों को भी अलग ना छोड़ा जाए। तो बेसिकली इसमें भी तलाक से और इद्दत से मुतल्लिक कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। एक क्या है कि मर्द को तलाक का इख्तियार है और इसे इस्तेमाल करने का हकीमाना तरीक़ाकार है। यानी जैसे शादी सोच समझ कर की थी, इतने मरहलों से गुजर कर कहीं तुम शादी करके लाए थे घर में बहू को और उसका वली में, और बाद के भी बड़े फेरे थे, बहुत सारी रस्में थी, तो तलाक क्यों एकदम दे देते हो। जैसे शादी स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही तलाक स्टेप बाय स्टेप। और इस्लाम के आयली कवानीन की तकमील है इस सूरत में। और इसमें से अगर मैं आपको आयत चूज़ कर दूँ तो मेरी फेवरेट आयतों में से खूबसूरत आयत इस सूरत की क्या है, अल्लाह अकबर। सारी सूरत ही हुसन से भरी हुई है, लेकिन इसमें अल्लाह सुबहान ताला ने जो बात कही है जिस पे आप और मैं गौर कर लें तो जिंदगियों के नक्शे बदल जाएं। और वो है जी, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए मखरज बनाएगा, यानी मुश्किलों से निकालने का रास्ता, एग्जिट देगा उसको। यरज़ुक्कु मिन हैसु ला यहतसिब, वहाँ से रिस्क आएगा जहाँ से गुमान भी नहीं। और जो अल्लाह पे तवक्कुल करे अल्लाह उसको काफ़ी है। अल्लाह ताला हमें इस हिदायत पे कान लगाने वाला बना दे। आखिरी सूरत पारे की سورۃ تحریم. اللہ کے نبی کے گھرانے کے ایک پرسنل میٹر کو بنیاد بنا کر امت کی اصلاح کی گئی. پہلی پانچ آیتوں میں شوہر اور بیوی کے لیے ہدایات ہیں کہ شوہر بیویوں کی خوشی کے لیے اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتے. آیت نمبر 6 سے 9 میں سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. واحد مقام ہے قرآن میں جس میں مسلمانوں کو آگ سے بچنے اور بچانے کی دعوت دی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو بھی خطرہ ہے آگ میں جانے کا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس میں ایک ایسی خوبصورت عورت کی خوبیاں ہیں جس کو آج کہیں کہ رشتہ ڈھونڈنے جائیں تو بچی میں یہ خوبیاں ڈھونڈ لیجئے. آیت 5 میں ہے، مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. آپ کہتے ہیں بس یہی نمبر لکھتی ہوں، یہی لڑکی چاہیے مجھے اپنے بیٹے کے لیے، تو بیٹا بھی تو لے آئیے نا، بڑا اعلیٰ درجے کا متقی ہوگا جو ایسی بچی کے ساتھ رہے گا. ورنہ تو کہ کم آپ یہ کیا لے آئیں، یہ تو ہر وقت مجھے بازی دیتی رہتی ہے. تو ہیرا جتنا بڑا ہوتا ہے نا اتنا مضبوط سانچا ہوتا ہے. تو اللہ کرے ہم اپنے بیٹی بیٹیاں اور بیٹوں کے بہترین معاملے کر سکیں. اور آئے 10 سے 12، بیوی کا علیحدہ تشخص ہے. اللہ نے اس میں بیویوں کو الگ کر کے دکھایا کہ فرعون کی بیوی ہے لیکن ایمان آ گیا تو رب ابن لیندہ کا بیتن فی الجنہ، اور اگر حضرت لوت اور نوح کی بیویاں تھیں تو وہ اب مسز لوت اور مسز نوح ہونے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گی. اپنے اپنے کام، جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اس کو کبھی آگے نہیں کرے گا. اور آیت نمبر 6 ہے، اس میں آیت ہدایت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. آپ ویب سائٹ سے بھی اس کی تفسیر سن سکتے ہیں، اس پہ بہت سارے لیکچرز بھی ہیں کہ ایمان والوں خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اور دیکھیے اسٹارٹ وتھ یور سیلف، جس کو کہتے ہیں نا بیفور ہیلپنگ ادرس ہیلپ یور سیلف. دوسروں کو آکسیجن ماسک پہنانے سے پہلے خود پہن لیجیے ورنہ آپ کی سانس نہ اکڑ جائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ساری ہی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک حدیث سنتے جائیے آج کے اس پارے کے ساتھ، قیامت کے دن کچھ لوگوں کی نیکیاں ان کے گھر والے کھا چکے ہوں گے. اولادوں کو قرآن سے جوڑیں گے تو انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.